ये रेडियो नेपाल है। अब नमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव अंतर्गत समानुपातिक प्रणाली के लिए दल पंजीकरण शुरू। आज 33 दल द्वारा निवेदन पेश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार करने के आरोप में 5 पूर्व मंत्री सहित 55 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज। एसईई परीक्षा के बाद नर्सिंग पढ़ाई पीसीएल को निरंतरता देने की सरकार की तैयारी। और भारत के गोवा स्थित एक नाइट क्लब में गैस विस्फोट से आग लगने पर 25 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक वर्ष 2081 विराशी का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर ने राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात में चुनावी माहौल बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण और फागुन 21 गते के लिए निर्धारित चुनाव की तैयारियों को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। गत भाद्र 23-24 के जयंती प्रदर्शनों के बाद उत्पन्न स्थिति के कारण अपनी जिम्मेदारी संभालने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने बताया कि सरकार उन घटनाओं की जांच को प्राथमिकता दे रही है। पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने जयंती प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार की सक्षमता पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सभी पक्षों को चुनाव को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कार्की के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की क्षमता पर अपना भरोसा व्यक्त किया। गत भादर 24 के आंदोलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए सिंह दरबार के संरचनात्मक निरीक्षण के बाद पूर्व राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री कार्की के बीच ये मुलाकात हुई थी। आगामी फागुन 21 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव अंतर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के लिए आज 33 राजनीतिक दलों ने आवेदन किया है। समानुपातिक प्रणाली में भाग लेने के इच्छुक राजनीतिक दल आज से परसों 23 गते तक आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के सह सचिव यज्ञ प्रसाद अधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर मार्गशीर्ष 26 तक उन्हें स्वीकृत किया जाएगा। बता दें कि आगामी पूछ 13 और 14 गते समानुपातिक उम्मीदवारों की बंद सूची पेश करने का समय निर्धारित किया गया है और माघ 4 गते प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि विमान केवल यात्री ले जाने का माध्यम नहीं बल्कि नवाचार, प्रविधि, सुरक्षा और मानव केंद्रित सेवा का मेल है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के अवसर पर नेपाल एयरलाइंस के कैबिन क्रू एसोसिएशन सीकैन द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सिन्हा ने ये बात कही। मंत्री सिन्हा ने उड़ानों को और अधिक सुरक्षित, पर्यावरण मित्रवत और यात्री अनुकूल बनाने के लिए विश्वभर में लगातार नए नए नवाचार हो रहे हैं, इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल कागज पर नहीं बल्कि कैबिन के भीतर जीवंत बनाने होंगे और इन्हें यात्रियों तक पहुंचाने में कैबिन क्रू की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय पोस्ट बहादुर बोगटी, राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दीपक चंद्र अमात्य और तत्कालीन अर्थमंत्री राम शरण महा, तत्कालीन सचिवों तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तत्कालीन महानिदेशकों त्रिरत्न महर्जन, रतीश चंद्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी सहित 55 व्यक्तियों और एक चीनी ठेकेदार कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण परियोजना में 8,36,73,00,000 रूपये से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये मामला दर्ज किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा है कि सुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार का अंत करने और निर्धारित तिथि पर चुनाव संपन्न कराने को वर्तमान सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। आज ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आगामी चुनाव में सही प्रतिनिधि चुनने का आग्रह किया। मंत्री खरेल ने स्पष्ट किया कि सरकार का प्रमुख लक्ष्य चुनाव संपन्न कराना है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा शर्मा गौतम ने कहा है कि सरकार एसईई परीक्षा के बाद नर्सिंग की पढ़ाई पीसीएल को निरंतरता देने की तैयारी में है। आज चितवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले समय में अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ नर्सों की संख्या में कमी आई है, इसलिए पीसीएल नर्सिंग कार्यक्रम संचालन की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। मध्य प्रदेश सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव ने आज पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख डॉ सुरेंद्र लावकर ने आज मध्य प्रदेश भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। इसी क्रम में तीन नवनियुक्त मंत्रियों को भी पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जनमत पार्टी से महेश प्रसाद यादव को अर्थमंत्री, नेपाली कांग्रेस से जगीलाल राय को बिना विभागीय मंत्री और नेकपा एकीकृत समाजवादी से कनिष पटेल को बिना विभागीय मंत्री नियुक्त किया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री यादव ने आगामी मंगलवार मार्कशीट 24 गदे को विश्वास मत लेने की तैयारी की है। आज हुई सत्ता पक्ष के साथ दलीय गठबंधन की बैठक में विश्वास मत लेने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी जसपा के प्रमुख सचेतक राम आशीष यादव ने दी। कथित तौर पर नागरिकता न मिलने के कारण बर्दिया की बढ़िया ताल की एक युवती के आत्महत्या के लिए बाध्य होने की घटना की जांच के लिए छानबीन समिति गठित हुई है। गृह मंत्रालय के सह सचिव तथा नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पंथी के संयोजकत्व में छानबीन समिति गठित की गई है। ये जानकारी गृह मंत्रालय के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। समिति को जांच कर प्रतिवेदन पेश करने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के गोवा के एक लोकप्रिय नाइट क्लब में गैस सिलेंडर के विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। ये घटना देर रात सुबह के समय हुई, जब क्लब में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये दुर्घटना गोवा के एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र में स्थित एक नाइट क्लब में हुई। प्रारंभिक जांच के अनुसार रसोई या एयर कंडीशनिंग यूनिट के पास गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसे तेज आग लग गई। आग तेजी से फैली क्योंकि इमारत में आसानी जलने वाली सामग्री जैसे फर्नीचर, सजावट मौजूद थी। विस्फोट और आग की तीव्रता के कारण लोगों के लिए बच निकलना मुश्किल हो गया। 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई गंभीर रूप से जलने और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल में भर्ती है। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और रात भर बचाव अभियान चलाया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। पुलिस ने क्लब के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही से मौत और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन जैसे मामले दर्ज किए हैं। ये पूछताछ की जा रही है कि क्या क्लब के पास वैध लाइसेंस था और क्या अग्नि सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अबोरा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में जान गंवाने वालों लोगों के परिवार के लिए 5 लाख रूपये सहायता राशि की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अंतर्गत समानुपातिक प्रणाली के लिए दल पंजीकरण शुरू। आज 33 दल द्वारा निवेदन पेश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार करने के आरोप में 5 पूर्व मंत्री सहित 55 लोगों के खिलाफ अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज। एसईई परीक्षा के बाद नर्सिंग पढ़ाई पीसीएल को निरंतरता देने की सरकार की तैयारी। और भारत के गोवा स्थित एक नाइट क्लब में गैस विस्फोट से आग लगने पर 25 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।